अध्याय 12 पृष्ठ संख्या 145। अपने आप ही कोठरी में गृहस्थी का बंटवारा हो गया था। बड़ी खाट पर दीनू अपनी पहली पत्नी के साथ सोता था। दूसरी दीवार के साथ लगी खाट पर बसंती अपने बच्चे को लेकर सोती थी। विवाहिता पत्नी का दर्जा भी रुक्मी को ही मिला, बसंती को नहीं। इसके पीछे रुक्मी का आग्रह रहा हो ऐसा नहीं था। वह तो दीनू की ही तरह बहुत कम बोलती थी। अपने आप ही स्थिति की सहज सूझ से ही ऐसा हो गया था। एक खाट पर पति पत्नी सोते थे, दूसरी खाट पर माँ बच्चा। इसमें बसंती को भी अटपटा नहीं लगा। उसकी छाती के साथ पृष्ठ संख्या 146 लगकर उसका बच्चा सोता था। इससे अधिक अनुकूल क्या होगा। बेशक रुक्मी उसकी घरवाली बनती, फिरे और उसके साथ सोए। बेटा तो मेरा ही है, दिनू का बेटा तो मेरे से ही है। इससे बसंती को गर्व का भी भास होता था। बसंती तो घर में पहुंचते ही बतियाने लगी थी, पर रुक्मी धीरे धीरे ही बसंती के साथ खुल पाई। दूसरे ही दिन जब दीनू बरडू से अपनी साइकिल लौटा लाने के लिए निकल गया, तो बसंती देर तक रुक्मी के साथ बतियाती रही थी। यहाँ यह घूंघट नहीं चलेगा महारानी जी, घूंघट काढ़ोगी तो क्या काम करोगी। रुक्मी सचमुच बड़ी गोरी थी, पीली पीली, गोरी गोरी और कातर आँखें। बसंती के साथ भी बातें करने में शर्माती थी, बात बात पर झेपती थी और उसका चेहरा लाल हो जाता था। उसके बालों में बंधे परांदे को देखकर बसंती खिलखिलाकर हंस पड़ी। यह परांदे कौन पहनता है इधर? मैं तुम्हें रिब्बन ला दूंगी। इधर रिब्बन पहनते हैं, देख ऐसा। और उसने अपने बालों में बंधा रिब्बन दिखाया। मैं तो बालों में फूल भी लगाती हूँ, तुम्हें भी ला दूंगी। फिर उसे समझाते हुए बोली, और मेरी बात समझ ले, इधर अकेले कहीं मत जाना। इधर सड़कों पर इतनी मोटर लारियां दौड़ती हैं, तू तो सड़क भी पार नहीं कर पाएगी। मैं तुझे सिखा दूंगी सड़क पार कैसे करते हैं। तूने लाल हरी बत्तियां देखी हैं? रुक्मी ने सिर हिला दिया। चौराहे पर लाल हरी बत्तियां लगी रहती हैं। लाल बत्ती जले तो मोटरें लारियां खड़ी हो जाती हैं, कोई भी आगे नहीं जा सकता। फिर जब हरी बत्ती मिले तो आगे जा सकते हैं। लाल बत्ती का मतलब है खड़े हो जाओ, हरी बत्ती का मतलब है चल पड़ो। फिर बसंती उसे कपड़ों के बारे में सीख देने लगी। क्या गाढ़े की सलवार पहनकर आई है? इस गाढ़े के कपड़े कौन पहनता है? फिर उसे समझाती हुई बोली, तू भी बॉडी पहना कर। बॉडी कभी पहनती है? पृष्ठ संख्या 147। पहले तो रुक्मी की समझ में ही नहीं आया कि बॉडी क्या होती है, पर जब बसंती ने अपने बारिश की पट्टी दिखाई तो शर्म से रुक्मी का चेहरा लाल हो गया और वह जोर जोर से सिर हिलाने लगी। अच्छा, मैं तुम्हें बॉडी ला दूंगी। जिस तरह चकित हिरनी के भांति रुक्मी आंखें फैलाए बसंती की चेहरे की ओर देख रही थी, उसी से बसंती आश्वस्त हो गई थी कि उसने अपना सिक्का जमा लिया है। रुक्मी पर उसका रौब तारी हो रहा है। इस पर तुरुप का पत्ता फेंकते हुए बसंती बोली, तूने टीवी देखा है? रुक्मी ने सिर हिला दिया। टीवी क्या होता है? फिर तूने देखा ही क्या है? मैं तुझे श्यामा बीवी के घर ले चलूंगी, इधर बहुत घरों में टीवी हैं। श्यामा बीवी का मुंह से निकल जाने पर बसंती को मन ही मन झेप हुई। रुक्मी को अपने साथ ले जाऊंगी तो श्यामा बीवी क्या कहेंगी? देखा, मैंने कहा था ना, तेरे साथ धोखा हुआ है। बसंती क्षण भर के लिए ठिठकी बैठी रही, फिर सिर झटक कर बोली, टीवी भी नहीं जानती? टीवी पर तस्वीर आती है, चलती फिरती तस्वीर, बातें करती है जैसे सिनेमा में होता है। टीवी पर सिनेमा की फिल्म भी दिखाते हैं, घर बैठकर सिनेमा देखो। मैंने बहुत देखा है, श्यामा बीवी के घर बड़ा अच्छा टीवी है, बिलायती टीवी है। बसंती चाहके जा रही थी। थोड़ी देर बाद बसंती रुक्मी का हाथ पकड़े उसे फिल्मी गीत सुना रही थी, एक के बाद एक गीत, साथ ही साथ फिल्मों के नाम और गाने वालों के नाम। मैं तुम्हें अच्छे अच्छे गाने सिखाऊंगी, मुझे ढेर से गाने आते हैं। जब पप्पू होने वाला था ना और मैं बिल्कुल अकेली थी, तो मैं सारा वक्त गाती रहती थी। फिर अपने आप ही अपनी खरज लयहीन आवाज में गीत गाने लगी कि जिस जालिम ने तड़पाया उसी पे मुझको प्यार आया। बड़ी मुश्किल से गाना खत्म हुआ तो बसंती ने झट से पूछ लिया, तेरे बच्चा नहीं हुआ ना? पृष्ठ संख्या 148। रुक्मी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया, उसकी नजरें झुक गईं और देखते ही देखते उसकी आंखें भर आईं। अरे, रोती क्यों है? क्या हुआ जो बच्चा नहीं हुआ तो? फिर फिर उसका हाथ पकड़कर बोली, नहीं रो, रोता कौन है। फिर रुक्मी को सुनाने लगी, पता है मैं कभी नहीं रोती, मुझे रोना आता ही नहीं, पर फिल्में देखते हुए रो पड़ती हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मुझे कोई पीट ले, मार ले, कभी नहीं रोऊंगी, पर फिल्म देखते हुए जरूर रोती हूँ। और बसंती हंसने लगी, तू तो मुझसे बड़ी है, बड़ी होकर रोती है। और बसंती ने आगे बढ़कर अपने पल्लू से रुक्मी की आंखें पोंछ दी और हल्के से मुस्कुरा दी। मुझे सब मालूम है, मैंने ऐसे ही तुझसे पूछ लिया, तू कोई फिक्र ना कर। और बसंती ने उसे शकुंतला बीवी का सारा किस्सा कह सुनाया। मेरठ में एक औरत रहती है, वह दवाई देती है, वह डॉक्टरानी भी नहीं है और दवाई के पैसे भी नहीं लेती, छोटी छोटी काले रंग की गोलियां देती है। क्या मालूम शकुंतला बीवी के पास अभी भी रखी हूँ, मैं आज ही पता करूँगी, नहीं तो मैं मेरठ से जाकर तुम्हें ला दूंगी। मेरठ इधर पास ही तो है, सुबह जाऊंगी और शाम को लौट भी आऊंगी, नहीं तो हम दोनों चलेंगी, तुम्हें वह औरत देख भी लेगी, पप्पू को भी साथ ले चलेंगी, ठीक है ना। रुक्मी की आंखों में चमक सी आ गई और वह बड़ी उत्सुकता से बसंती की ओर देखने लगी। पिछली रात जब दीनू बसंती को घर में लाया था तो रुक्मी हैरान रह गई थी। उसकी समझ में ही नहीं आया था कि बसंती कौन है और उनकी कोठरी में कैसे आ गई है। गांव में दीनू ने इसके बारे में रुक्मी को कुछ भी नहीं बताया था। एक बार उनके बीच झगड़ा होने पर रुक्मी को धमकाते हुए उसने इतना भर कहा था कि दिल्ली में भी एक लड़की है जो उसके साथ रहती है। तब रुक्मी रोने लगी थी और देर तक रोती रही थी और दीनू ने उसे चुप कराने की कोई कोशिश नहीं की थी। कुछ दिन बाद वह रुक्मी को स्वयं शहर में ले आया था इस उम्मीद पर कि यहाँ वह अपनी पत्नी का इलाज करवा सकेगा ताकि उसे भी संतान का सुख नसीब हो। ज्यों ज्यों रुक्मी से संतान उत्पत्ति की पृष्ठ संख्या 149 आशा मंद पड़ती जाती थी, बच्चे के लिए उसकी ललक उतनी ही अधिक बढ़ती जा रही थी। बसंती के अचानक मिल जाने से उसे तसल्ली हुई थी और अपने बच्चे को पाकर तो उसे अपार सुख मिला था। रुक्मी के बच्चा नहीं हुआ तो यह पप्पू तो मेरा है ही। इसी विश्वास के साथ वह बसंती को अपनी कोठरी में ले गया था। बसंती के अंदर आने पर रुक्मी का दिल धक से रह गया था। शहरी तरीकों से अनभिज्ञ होने पर भी वह अंदर ही अंदर महसूसती रही थी, पर अब बसंती की बातें सुनते हुए और उसकी आत्मीयता से प्रभावित होकर वह धीरे धीरे खुलने लगी थी। बसंती बराबर चाहक रही थी, जब दीनू को काम मिल जाएगा ना तो मैं और तुम खूब घुमा करेंगी, मैं तुम्हें लाल किला दिखाऊंगी, कुतुब मीनार, कन्नाट पैलेस, वहाँ इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ कि तुम्हें क्या बताऊँ, धक्के पर धक्का पड़ता है। दीनू का नाम बसंती के मुंह से सुनकर रुक्मी का चेहरा लाल पड़ गया, झट से बोली, नाम नहीं लेते, किसका, उनका, उस हरामी का। बसंती ने रौब गांठते हुए कहा, झट से हंसने लगी। रुक्मी का चेहरा तमतमाने लगा और उसने पल्ले से अपना मुंह ढांप लिया। नाम लो तो पाप लगता है, तुझे पाप लगता है तो तू उसे डार्लिंग बुलाया कर, बसंती हंसकर कहने लगी। श्यामा बीवी अपने घर वाले को डार्लिंग बुलाती हैं। और बसंती श्यामा बीवी की नकल उतारने लगी, डार्लिंग चपाती और लोगे, डार्लिंग एक छोटी सी चपाती और ले लो डार्लिंग, तुमने तो कुछ भी नहीं खाया डार्लिंग, और ठहाका मारकर हंसने लगी। इधर जब काम लग जाएगा तो हम तुम एक जैसे कपड़े बनवाएंगी, एक ही रंग के, एक ही काट के, क्यों, है ना। रुक्मी को यह सुझाव बड़ा अटपटा सा लगा। फिर एक साथ घूमने जाया करेंगी, मैं तुम्हें सारी दिल्ली की सैर पृष्ठ संख्या 150 करवाऊंगी, मैंने एक एक जगह देखी है, लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, वहाँ आइसक्रीम मिलती है, तूने कभी आइसक्रीम खाई है। रुक्मी फिर बच्चों की तरह आंखें फैलाए बसंती की ओर देखे जा रही थी। मैं और लाडो बसों में बहुत घूमती थी, तब हम इधर बस्ती में रहते थे, हमने बस का कभी टिकट नहीं लिया, एक बार भी नहीं पकड़ी गई, बसंती उत्साह में बोले जा रही थी। हम एक साथ तस्वीर भी खिंचवाएंगी, इधर रमेश नगर में एक दुकान है, उधर फोटो उतारते हैं, मैं तुम्हें ले चलूंगी। बसंती को लग रहा था जैसे वह फिर से जीवन आरंभ कर रही है, जैसे उसका बचपन अपनी सभी इच्छाओं आकांक्षाओं के साथ फिर से जाग उठा है और बीच के साल समय के किसी गर्त में डूब गए हैं, अपना अस्तित्व और अपनी भयावहता खो बैठे हैं। पर तभी दीनू घर पर लौट आया था, वर्तमान के समूचे यथार्थ को अपने साथ बांध कर लाता हुआ। उसी दिन शाम को एक ऐसी घटना घटी जिसकी बसंती को आशा नहीं थी। दिनू बाहर से घूम कर लौटा तो बसंती जिस तरह रौब गांठने की आवाज़ में रुक्मी के साथ बोलती रही थी, उसी लहजे में दिनू के सामने भी बोलने लगी। किसे उठा लाया है? यह तो जाहिल है, कुछ भी नहीं जानती। यह तो घर से निकलते ही रास्ता भटक जाएगी, इसे तो सब सिखाना पड़ेगा। इस पर दीनू को लगा जैसे वह रुक्मी का नहीं दीनू का मजाक उड़ा रही है कि उसकी बीवी इतनी जाहिल है। पर इस पर भी बस न था। जब बसंती के मुंह से निकला, यह किसे पकड़ लाया है, तो सीधा एक तमाचा उड़ता हुआ उसके गाल पर पड़ा और बसंती सिर से पांव तक झंझना उठी। और जब वह हैरान परेशान दरवाजे में खड़ी अपना गाल सहला रही थी, तो दीनू ने चिल्ला कर कहा, खड़ी देख क्या रही है? चूल्हा तू जलाएगी या मैं जलाऊंगा? बसंती जिस भविष्य की कल्पना करने लगी थी, उसमें दीनू का स्थान उसने ठीक ढंग से नहीं आका था। वह भूल गई थी कि दीनू दो बीवियों का मालिक है, घर में उसी की चलेगी। बसंती समझे बैठी थी कि चूंकि उसकी गोद में बेटा है, या इसलिए कि वह काम कर सकती है और कमा सकती है, घर में उसकी पृष्ठ संख्या 151 चलेगी। वह भूल गई थी कि इस घर का धुरा दीनू था, वह नहीं थी। बसंती देर तक दरवाजे में खड़ी बिसुरती रही। यथार्थ के एक ही झापड़ ने इच्छाओं, आकांक्षाओं और सपनों को चूर चूर कर दिया हो, ऐसा तो नहीं था। लेकिन बसंती भौचक सी जरूर देखती रह गई थी कि यह क्या हो गया है। अजब यह था, और बसंती के जीवन की विडंबना भी इसी में थी कि ना तो विषमताएं बसंती का पीछा छोड़ती थीं और ना बसंती का सपना देखने वाला स्वभाव ही बदल पाता था। दिन पर दिन बीतने लगे। दीनू अभी तक कोई धंधा वंधा नहीं करता था, ना उसकी उसे बहुत तलाश ही थी। पहले कुछ दिनों तो बरडू से अपनी साइकिल लेने में निकाल दिए, इसके लिए भी 70 रुपये बसंती से ले गया, जो लंगड़े दर्जी के पैसे में से उसके पास बच रहे थे। ब्याह शादियों का मौसम निकल गया था और अब नई साइत निकलने में तनिक महीने पड़े थे। दीनू घर का काम नहीं करना चाहता था। बसंती ने दो तीन पुराने घर पकड़ लिए थे, लेकिन दीनू इस काम पर नाक भौं चढ़ाता था। बसंती ने उसे दो एक बार कहा कि तुम भी कुछ घर पकड़ लो, तो पलट कर बोला, इस काम में क्या रखा है? मैं तो किसी फैक्ट्री में काम करूंगा या सरकारी दफ्तर में चपरासी बनूंगा। मिलेगी तो करेगा, अपने आप कैसे कर लेगा? कभी कभी दीनू पीतल तांबे को लेकर सोना बनाने की बात भी करता। कहता है कि विनय नगर में एक आदमी यह हिकमत जानता है, वह उसके पास जाकर यह हिकमत सीखेगा और फिर पीतल तांबे को सोने में बदला करेगा। वास्तव में अपने को ऊंची जात का समझने वाले तथा दो बीवियों को एक साइकिल के मालिक के लिए घरों में चौका बर्तन का काम करने में उसकी हेठी थी। तंबाकू खाने की उसे लत पड़ गई थी। एक यह नई बात थी जो बसंती ने उसमें देखी थी, या फिर कोठरी के बाहर पप्पू को गोद में लिए घंटों बैठा रहता, यही उसकी दिनचर्या बनती जा रही थी। साइकिल छुड़ाने के बाद वह दिन को किसी वक्त एक चक्कर बाहर का लगाता था। कुछ पता नहीं था कि कहाँ जाता, दोपहर ढलने पर घर आ जाता, दोनों बीवियों पर हुक्म चलाता, बसंती को सीख देता, तरह तरह की हिदायतें देता। अगर सुषमा बीवी 30 रुपये नहीं दे सकती तो तू काम छोड़ दे, हमें ऐसे काम की जरूरत नहीं है। कोई और घर पृष्ठ संख्या 152 पकड़ लेना, या फिर बाहर बैठे बैठे हुक्म चलाता, जो उसकी पुरानी आदत थी। और रात को कभी रुक्मी का तो कभी बसंती का शरीर चिचोड़ता रहता था। लगता था उसने यही एक धंधा अपना रखा है। बसंती अपने स्वभावानुसार बड़ी जल्दी नई परिस्थिति के अभ्यस्त हो गई। उसके अनुरूप अपने को ढालने में उसे देर भी नहीं लगी थी। यही होगा, ऐसे ही चलेगा, वह मन ही मन कहती। ज़्यादा दूर तक तो वह देख ही नहीं पाती थी और कोशिश करने पर उसे कुछ नज़र भी नहीं आता था। उस जैसे लोगों के लिए एक दिन दूसरे से जुड़ा नहीं होता, प्रत्येक दिन अलग-अलग इकाई सा होता है। वह आज के दिन को आने वाले दिन के साथ जोड़कर नहीं देख सकती। आज काम है तो है, कल काम नहीं होगा तो नहीं होगा। एक दिन दूसरे दिन से तब जुड़ता है जब काम को पक्का रख पाना अपने बस की बात हो। जहाँ किसी दिन किसी भी घड़ी काम छूट सकता हो, घर वाला भाग सकता हो, बसी बसाई बस्ती मलबे का ढेर बन सकती हो, वहाँ कोई दिनों और महीनों और सालों की योजना कैसे बना सकता है? जो दिन जैसा बीत जाए, अगला दिन आएगा तो देख लेंगे। बसंती को भी ऐसी ही मना स्थिति थी। आज जिंदगी ऐसे ही चलने लगी है, ऐसे ही चलेगी जब तक इसे चलना है। दिन बीत रहे थे, घर में घुटन बढ़ रही थी, तरह तरह की नई पेचीदगियाँ उठ रही थी और कोठरी में बसने वालों के आपसी रिश्तों में तरह तरह के तनाव आने लगे। शुरू शुरू में ऐसा नहीं था। कोठरी में जब पहली बार दिनू उसके पास आया था तो बसंती को अच्छा लगा था। दिनू की वहशियों जैसी भूख और हड़बड़ाहट भी उसे बुरी नहीं लगी थी। बड़े आग्रह से उसके गले में हाथ डालते हुए बसंती ने कहा था, आज बड़ा प्यार आया है। उस वक्त कहाँ था जब पप्पू होने वाला था और तू मुझे अकेला छोड़कर चला गया था? इस पर बिना कुछ कहे दिनू अपना हाथ पप्पू की ओर बढ़ाकर उसका सिर सहलाने लगा था। और यह भी बसंती को बड़ा अच्छा लगा था। दिनू के साथ इस तरह सट कर लेटने में उसे बड़ी तृप्ति का अनुभव हुआ था। कोई शिकायत मन में उठती भी थी तो उसे मुंह पर लाने को जी नहीं चाहता था। और पृष्ठ संख्या 153, साथ वाली खाट पर रुक्मी की उपस्थिति भी खलती नहीं थी। तरह तरह की यादें उसके मन में उठती रही थीं, अच्छी भी और बुरी भी। लेकिन उसने दीनू से कुछ नहीं कहा था, बल्कि दीनू के साथ और भी ज़्यादा सट कर लेट गई थी, क्योंकि उसके निकट होने से वह अधिक सुरक्षित महसूस करती थी। तभी दीनू ने उससे पैसे भी मांग लिए थे और बसंती ने उसी वक्त उठकर उसे पूरे 70 रुपये दे दिए थे। तब भी दीनू के व्यवहार में उसे किसी कोमल भावना का, किसी आत्मीयता का, अपनेपन का भास मिला हो ऐसा नहीं था। दीनू तब भी इसका शरीर ही चिचोड़ता था, लेकिन बसंती को उसके सामीप्य से ही असीम सुख मिलता था। पर फिर गृहस्थी की गाड़ी हिचकोले खाती धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी तो यह सब पीछे छूट गया और इसके स्थान पर घुटन, ईर्ष्या, द्वेष, कृपणता अपने फन उठाने लगे और रात पड़ते ही कोठरी से वासना की घिनौनी सी बू आने लगती। अभी तक तीनों में से बसंती ही काम करती थी और कुछ कमा कर लाने लगी थी। पहले 3 घर 15-15 रुपए के और बाद में 2 घर और 10-10 रुपए के बसंती ने पकड़ लिए थे। पप्पू को दीनू और रुक्मी के सहारे कोठरी में छोड़ जाती, पर कई बार ऐसा होता कि कुछ घरों को निपटा कर वह भागती हुई घर लौटती तो देखती कि घर में चूल्हा ही नहीं जला है। तीनू घर पर नहीं है, किसी के साथ गप में हाँकता निकल गया है। रुक्मी ने चूल्हा इसलिए नहीं जलाया कि घर में चढ़ाने बनाने को कुछ था ही नहीं, और पप्पू कोठरी की दहलीज के आर पार रो रो कर सो गया है। बसंती मन महसूस कर रह जाती, थोड़े से वक्त में चूल्हा जलाती और खाना बनाती तो दीनू भी पहुंच जाता और रुक्मी भी आकर बैठ जाती। इस पर दीनू हुक्म चलाता, सुषमा बीवी ने पगार बढ़ाई है या नहीं? तेरे मुंह में जवान नहीं है? उसे कह नहीं सकती कि हमें 15 रुपये मंजूर नहीं है? आज उसे कहकर आना। और अब रुक्मी भी दीनू के कान भरने लगी थी, न जाने क्या खुसफुस करती रहती थी। पर बसंती को कुछ कहते नहीं बनता था। पप्पू को जो उनके सहारे छोड़ जाती थी, रोता था या खेलता था, इनके पास तो रहता था। काम पर वह उसे कहाँ उठाए फिरे। दो एक बार वह उसे अपने साथ ले भी गई थी, पर उसने बीवी का फर्श गंदा कर दिया था और बीवी ने उससे सारा घर, पृष्ठ संख्या 154, धुलवाया था और बच्चे को फिर से लाने की मनाही कर दी थी। एक रात अभी बसंती की आंख नहीं लगी थी और पप्पू दूध पीते पीते सो गया था और साथ वाली खाट पर रोज की सी खुसुर खुसुर चलने लगी थी और तरह तरह की आवाजें आने लगी थी। जब थोड़ी देर बाद दीनू की आवाज आई, तू भी आ जा चाहती है तो। इस पर बसंती जवाब में कुछ कहे या ना कहे कि सहसा उसे उबकाई आ गई और उसने मुंह में पल्ला ठूंस लिया और अपनी मतली को दबा पाने के लिए करवट बदल ली। अरे बसंती, आना चाहती है तो तू भी आ जा। बसंती ने जोर से सिर हिला दिया और उहूं कहती रही, पर फिर वह सचमुच उठ बैठी और भाग कर कह करने बाहर चली गई। दीनू की समझ में नहीं आया कि क्या बात है, वह अपनी खाट पर ही पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद बसंती बाहर से लौटी और आकर फिर से अपनी खाट पर पड़ रही। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू पड़ा रहा, आती है तो आ जा, दीनू ने एक बार फिर कहा। क्यों, उससे तेरा जी नहीं भरा? बसंती बोली, मुझे नहीं चाहिए। और उसने करवट बदल ली। इस कोठरी में मेरा दम घुटता है, दिनू कुछ नहीं बोला। उसका आग्रह भी शिथिल पड़ गया था। पहले ही शायद उसका आग्रह अनमना सा था। हॉस्टल में उसके आग्रह से बसंती परिचित थी। बसंती विरोध भी करती तो वह मानता नहीं था। सहसा बसंती भभक कर उठ बैठी। तूने बरडू से पैसे लिए थे? कौन से पैसे, क्या बक रही है? 300 रुपये, बोल, लिए थे 300 रुपये? दिनू को इतने तीखे प्रश्न की आशा नहीं थी। तुम्हें बोल जो दिया, मैंने उसे साइकिल बेची थी और उसने 70 रुपये में साइकिल लौटा दी। बाकी पैसे उसे फिर दूंगा। अब बक बक नहीं कर। पृष्ठ संख्या 155। वह कहता था तू मुझे उसके हाथ बेच गया था। दिनू चुप रहा। बसंती का पारा चढ़ता जा रहा था। बोल, बोलता क्यों नहीं? तू मुझे अपनी रखेल बना गया था। चुप रह, चुप रह, चिल्ला नहीं, नहीं एक झापड़ दूंगा, सारे दांत बाहर आ जाएंगे। पर बसंती मानो आपे से बाहर होती जा रही थी। तू भी हरामी, वह भी हरामी, खबरदार जो मेरे बच्चे को हाथ लगाया। बड़ा आया बेचने वाला, मेरे पेट में अपना बच्चा देकर मुझे बेचने चला था। हरामी, बेशर्म, बदजात। बसंती को क्या हो गया था उसे खुद मालूम नहीं था। सहसा ही वह भड़क उठी थी। उन क्षणों में भी जब वह अकेली भटकती फिरती थी और तरह तरह की यातनाएं सह रही थी, उसके मुंह से दीनू के प्रति एक भी बुरा शब्द नहीं निकला था। वह कभी कभी मन ही मन कलपती रहती थी, पर दीनू को सदा निर्दोष ही पाया था। पर आज सहसा ही जैसे कोई दबी चिंगारी भभक उठी हो। उस पर जुनून छाता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। कल ही मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, कोई दूसरी कोठरी लेकर रहूंगी। बेशक चली जाना, अभी चली जा, मगर पप्पू कहीं नहीं जाएगा। क्या कहा? पप्पू को हाथ लगाया तो मैं तेरी बोटी बोटी काट डालूंगी। बड़ा आया पप्पू को अपना कहने वाला। दिनू जो सचमुच आवेश में आकर बसंती को झापड़ लगाने जा रहा था और कई बार लगा भी चुका था, उसकी तीखी क्रुद्ध आवाज़ सुनकर चुप हो गया और अपनी खाट पर ही पड़ा रहा। दोनों पिल्लों की तरह घर में पड़े रहते हैं, बेशर्म, बेहया। पप्पू भूखा रो रो कर सो गया था। अब बोली तो एक झापड़ दूंगा, दीनू ने कहा, पर उसकी आवाज में पहले वाला दम न था। मैं तेरी आंतें खींच लूंगी, तू समझता क्या है? लगा तो हाथ मुझे। सासा पप्पू जाग पड़ा और जागते ही जोर जोर से रोने लगा। शायद ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाजें सुनकर वह डर गया था। इस पर दीनू खाट से उठा और उसके पास चला गया। पृष्ठ संख्या 156। बस बेटे बस, सो जा सो जा, खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ लगाया, बसंती ने फुफकारते हुए कहा। पर दीनू ने तब तक आगे बढ़कर बच्चे को उठा लिया था। बस बस बेटा, सो जा, बस बस। और वह पप्पू को थपथपाते हुए सुलाने की कोशिश करने लगा। दीनू भले ही बसंती के साथ बुरा बोले, पप्पू को सारा वक्त दुलारता रहता था। पप्पू ने दो एक दर्द भरी गहरी सांसें ली और फिर दीनू के थपथपाते हाथ के नीचे उसकी छाती से लगकर चुप हो गया और कुछ ही देर में दोनों आंखें बंद करके सो गया। बसंती का पारा जितनी तेजी से चढ़ा था उतनी ही तेजी से उतरने भी लगा। पप्पू अब अपने बाप का हाथ पहचानने लगा था। कोठरी में छाए अंधेरे में भी बसंती मानो देख रही थी कि दीनू पप्पू को वैसे ही बाहों में लिए सुला रहा था जैसे वह सुलाती थी, वैसे ही उस पर झुका हुआ था जैसे वह झुकती थी। वह चुपचाप खाट के पैताने बैठ गई। चला जा, अब मैं इसे सुला लूंगी। सो गया है, तू क्या सुलाएगी? और दीनू उठकर दूसरी खाट पर चला गया। बसंती का सारा गुस्सा ठंडा पड़ गया। मेरे साथ बुरा बोलता है, पर पप्पू को तो छाती से लगा लेता है, उसके बिना तो नहीं रह सकता। बसंती ने ठंडी आह भरी और खाट पर पड़ रही। बसंती को फिर से आत्मीयता का सा भास हुआ। क्षण भर के लिए उसे लगा जैसे कोठरी में केवल वही तीनों हैं, दीनू, पप्पू और बसंती, और चौथा कोई नहीं है। और जिस घर की वह कल्पना किया करती थी वह सचमुच अस्तित्व में है, टूटा नहीं है। तू लेटता है पप्पू के साथ तो लेट जा, मैं फर्श पर पड़ रहूंगी, बसंती ने कहा। दीनू ने कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ी ही देर में खर्राटे भरने लगा।